ओम शांति। आप में से शायद कुछ ये सोच रहे होंगे कि हमें तो सौगात के लिए यहाँ बुलाया गया है, यहाँ तो क्लास के बाद क्लास होने लग गई है। मैं ऐसा समझती हूँ कि सबसे बड़ी महान सौगात जो प्यारे मधुबन से हम सब लेकर जाएंगे, स्थूल सौगात तो मिलेगी ही, लेकिन स्थूल के साथ सूक्ष्म सौगातें जो हमारे जीवन में एक ऐसा नया दृश्य ला दे कि जीवन ही सौगात बन जाए, जीवन ही दर्शनीय मूर्त बन जाए, वह है ज्ञान और योग के आधार से। तो दादी जानकी जी ने ऐसा ही कहा कि आप पहले चलो, जब तक सबसे मिलो, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी नहीं है। तो हमें जो आज्ञा मिली तो मैं आप सबके सन्मुख आई और आप सबको देखकर मुझे एक बात याद आ रही है, क्योंकि आज प्रातः ही सतगुरुवार के दिन हम पांडव भवन में बाबा को भोग लगा रही थी और हमारे साथ ही संदेश पुत्री जो बाबा के पास साक्षात्कार में जाती हैं, वह बैठी और प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया। वापस आने पर वे अपना अनुभव सुना रही थी। अच्छा अनुभव है इसलिए मैं आपको भी सुना रही हूँ। कहा कि आज जब मैं वतन में गई तो वतन का दृश्य बहुत अलौकिक था और दिव्य दृश्य था। उसकी दिव्यता क्या थी? कहा मैंने देखा कि तीन बहुत ही मनोरम कमल वहां खिले हुए थे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि सूक्ष्म वतन जो प्रकाश का वतन है, जिसको बाबा ने संदेशों द्वारा हमें अवगत भी कराया कि जैसे हजारों चंद्रमा इकट्ठे ही निकल आए, ऐसा प्रकाश में वतन है सूक्ष्म वतन। तो वहां पर जो लोटस देखने में आया, जो कमल देखने में आया, तो कलर तो कलर ही था, लेकिन उसमें इतनी लाइट हो तो कमल की शोभा कितनी प्यारी होगी। और कहा प्रत्येक तीन कमल थे, एक कमल पर बाबा बैठ गए, एक कमल पर मामा बैठे और एक कमल पर दादी जी बैठे। इतने में देखा कि बाबा मामा दादी के सन्मुख बहुत से कमल वहां आ गए और हर कमल पर बच्चे बैठे हुए थे। बड़ा प्यारा दृश्य लग रहा था, क्योंकि वतन एक जादू की नगरी है जहां कुछ भी उपस्थित करना बाबा के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। का कुछ समय के पश्चात बाबा ने बच्चों को एक आज्ञा दी कि बच्चे जाओ, मेरे भक्त बच्चों को उनकी मनोकामना पूर्ण करके आओ, चलो मंदिरों में चलो जहां आपको मेरे भक्त मिलेंगे। जो ही बाबा ने कहा चलो, तो जो कमल के ऊपर बच्चे बैठे थे उनके सिर पर एक लाइट का क्रॉन था, प्रकाशित ताज था और बहुत ही मनोरम रूप से योग युक्त स्थिति में जैसे सब बैठे हैं। और जो ही बाबा ने कहा चलो, तो सभी कमल सहित जैसे उठने प्रारंभ हो गए और उठते ही चारों दिशाओं में कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, चारों दिशाओं में वो चले गए। और दृश्य देख रही थी कि सभी उन भक्तों के पास पहुंचे जो बहुत इंटेंस भक्ति कर रहे थे और भगवान से अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वो उनके सन्मुख विराजित है। लोटस पर ये बच्चे जब गए तो तीन लाइट की किरणें इनसे निकल रही थी, दो किरणें नैनों से और एक किरण मस्तक से। और तीनों किरणें जब जाकर भक्त पर पड़ती थी तो तीनों का फोकस एकत्रित होकर उन पर फोकस आता था और वे आत्माएं इस लाइट को और इस माइट को प्राप्त कर ऐसा अनुभव कर रही थी कि जैसे हमारी जन्म जन्म की आशा पूर्ण होने का समय आ गया और हमें कोई अपनी तरफ बुला रहा है। और मन से उनकी एक आवाज निकल रही थी कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने का शेष नहीं रहा, समय आ चुका है। तो बाबा ने इतना दृश्य दिखाने के पश्चात फिर संदेश दिया कि कई बार बच्चे पूछते हैं बाबा की हम बच्चों से क्या आशा है, हमसे बाबा क्या चाहते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप से शक्तियों को प्राप्त कर विश्व में प्रभु की प्राप्तियों के अभिलाषी आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने मेरे बच्चे सदा तत्पर हो जाएं। चारों दिशाओं में आत्माएं मुझ पिता परमात्मा की प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए इतने लालियत हैं, इतने चिंतित हैं, बच्चों को उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये संदेश के साथ मुझे जो बात याद आई, जब प्रथम बार सुनामी भारतवर्ष और आसपास हुई तो हमें मालूम है कि सुनामी लहर जो 26 दिसंबर को फर्स्ट टाइम थी उसमें लाखों लोगों ने शरीर छोड़ा था। और जब एक साल हुआ तो न्यूज़पेपर में काफी न्यूज़ में एक बात निकली कि आज भी अगर उन स्थानों पर जाते हैं, वो एक साल के बाद की बात है, तो ऐसे आवाजें आती हैं जैसे कि मेरा घर कहाँ है, मेरा बच्चे कहाँ है, ये सब कुछ क्या हो गया, सब कहाँ चले गए। क्योंकि जब अकस्मात मौत होती है तो उन आत्माओं को अपने पूर्व के जन्मों को विस्मृत होना, पूर्व के संबंधों को भूलना अति कठिन होता है और वो स्मृतियां उनके मानस पटल पर ताजी बनकर आती हैं। और ऐसा अखबार में कहना था कि आज भी वो आवाजें सुनने में आती। और हम बच्चों को हमारे प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई है कि बच्चे सुबह सुबह उठकर विश्व के ग्लोब पर बैठ बाबा से लाइट और माइट लेकर सर्व विश्व की आत्माओं को इन शक्तियों का सहयोग दो। ये कार्य केवल तुम बच्चे ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और उसका कारण क्या कि तुम बच्चों ने मुझ शांति शक्ति के सागर को पहचानना है। और पहचानना ही नहीं, पहचान कर संबंध जोड़ने की कला सीखी है और उस कला के आधार से आप मुझसे शांति और शक्ति लेकर किसी भी आत्मा को प्रदान कर सकते हो। सिवाय तुम बच्चों के विश्व की सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति का कोई साकाश नहीं दे सकता है। और ऐसा देखने में आता है, ये बाबा के बोल हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आत्माएं शरीर छोड़ेंगी लेकिन शरीर उस समय छोड़ेंगी जबकि अभी मुक्ति का द्वार खुला नहीं है। और विज्ञान के वो साधन जिसको बाबा कहते हैं, इस प्रकार के केमिकल्स जिनका प्रयोग होना प्रारंभ होगा, जिससे गर्भ भी ना हो सके, जब लाखों के अंदाज में आत्माएं अकस्मात घटनाओं में, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं भूकंप और कहीं कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, जिसमें ऐसी लाखों आत्माएं शरीर छोड़े और मुक्ति के द्वार में जा न सके, गर्भ में पहुंच न सके, आप सोचिए वो आत्माएं कहां जाएंगी। अवश्य वो आत्माएं इसी साकार जगत में भटकेंगी। ऐसी भटकती हुई आत्माएं अगर किसी के साथ संबंध गहरा होगा तो वो प्रविष्ट भी किसी में हो सकती हैं, और किसी के रास्ते में बाधक बन उनके रास्ते को रोक भी सकती हैं। बाबा ने इस पर एक बार स्पष्ट किया था कि अगर आप बच्चों ने ज्ञान लिया है, योग सीखा है, लेकिन समय ऐसा आएगा जब आत्माओं को इन चीजों की अति आवश्यकता होगी, उस समय वे आत्माएं सूक्ष्म रूप से आपके रास्ते में बाधक बनेंगी कि आपने बहुत कुछ लिया, अब कुछ हमें भी दो। आप ज्ञान सीखने आ रहे हैं, रास्ता आपका रुक गया, पता नहीं चलता बात क्या है, आप वापस जा रहे हैं, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका पढ़ने में मन उठ रहा है, कुछ बुद्धि में नहीं बैठ रहा, आत्माएं बाधक बन सकती। तो बाबा का हम बच्चों को बहुत समय से ये कहना कि विश्व की ऐसी आत्माएं जो आज भी दुख और शांति के जीवन जी रही हैं, यह स्वयं को सुख और शांति स्वर्ग समझकर इस संसार में जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन बच्चों को मालूम है कि कोई स्वर्ग नहीं, ये माया का पंप है। बच्चों को प्रातः अथवा कोई भी समय निकालकर विश्व की आत्माओं को बाबा से शक्तियां लेकर साकाश देनी चाहिए। अगर बच्चों ने बहुत काल से विश्व की आत्माओं की ऐसी सेवाएं की हुई होंगी, तो जब आत्माओं के सामने एक बाधक बनेंगी, लेकिन सेवा करने वाली सेवाधारी आत्मा के सामने, स्वामी के सामने सेवक कुछ कहेगा नहीं, वो आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगी, कोई आपको कष्ट नहीं देंगी। बच्चे, ऐसा समय आने से पूर्व तुम सर्व आत्माओं को अपना स्नेही और सहयोगी बन, स्नेही और सहयोगी बनाओ। ऐसा नहीं कि उन आत्माओं को आवश्यकता है, आप उनको योग का बल दे रहे हो, लेकिन हमें स्वयं की, स्वयं को भी आवश्यकता है कि हमारा रास्ता साफ रहे, हम किसी प्रकार की बाधा से बंधन में ना आए। तो स्वयं को स्वयं का मित्र बनने के लिए केवल योग ना लगाओ, लेकिन जहां बाबा को याद करो, और याद के वाइब्रेशन स्वाभाविक हैं, फैलते हैं, लेकिन विशेष रूप से बाबा से साकाश लेकर विश्व की आत्माओं को साकाश दो। जिस पर हमें एक बार बाबा ने ऐसे बात कही थी, तो हमसे बाबा ने पूछा कि बच्ची आपका नाम क्या है, तो हम मुस्कुराने लगे क्योंकि हमको ये नाम बाबा ने दिया था। लेकिन पुनः बाबा ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने बाबा को अपना नाम बताया कि बाबा चक्रधारी हैं। तब मुझे बाबा ने उस समय ये पूछा कि तुम्हें मालूम है चक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बाबा को चक्रों का वर्णन कर रही थी,
लेकिन एक चक्र जो मैं नहीं सुना पा रही थी, तब बावन ने कहा बच्ची एक चक्र ऐसा है, अगर बच्चे वो चक्र चलाते रहें तो विश्व के चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। और वो चक्र को बाबा ने नाम दिया। हमें पूछा कि आपने कभी लाइट हाउस देखा है? मैंने कहा जी बाबा। कहा कैसे लाइट हाउस चारों तरफ प्रकाश देता है और जिसको निश्चित स्थल पनाना है वो प्रकाश की किरण के आधार से उस निश्चित स्थल पर पहुंचता है। ठीक तुम बच्चों को भी विश्व के ग्लोब पर बैठकर सर्व विश्व की आत्माओं को ऐसी ही शांति शक्ति और बाबा के उस पावर का एक्सपीरियंस कराओ। कई आत्माएं ऐसी भी होंगी जिन्होंने ज्ञान सुन अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा, वो आपके योग की लाइट के आधार से उसे फॉलो करते हुए वो कभी भी आपके पास पहुंचेंगे और आप बच्चों से बाप का पूरा पैगाम लेकर जाएंगे। ये भी विश्व की आत्माओं की सेवा करने का बहुत सुंदर तरीका है। अगर कोई बच्चा मुख से नहीं बोल सकता, धन से नहीं कुछ ज्यादा कर सकता, तन से ज्यादा नहीं कर सकता, तो बाबा ने कहा मन से तो करते रह सकते हैं ना। मन की सेवा भी कम सेवा नहीं है, ये सारे विश्व की आत्माओं की सेवा है। तो हम अपने आप से ये पूछें कि हम बाबा के बच्चे जिन्होंने बाप को पहचानना है, जानना है, वे पहचान और जानना केवल स्वयं तक सीमित न रहे, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं यहाँ वही आते हैं जो ब्राह्मण हैं। हाँ, अगर कोई ब्राह्मण अभी उन मर्यादाओं में नहीं चले, वो आ भी गए तो कई बार वो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। बाबा उन्हें कुछ देना भी चाहेगा तो ले नहीं पाएंगे। कई बार अपने भोले भाले भाई बहने ऐसा समझ लेते हैं कि मधुबन में जाएंगे तो शायद ये उठ जाएंगे और ज्ञान में चलने लग जाएंगे। भूल जाते हैं कि हम ये अवज्ञा कर रहे हैं। ज्ञान सागर के सन्मुख लाने के नियम क्या है वो विस्मित हो जाते हैं। उठना ज्ञान से है, कोई बाबा को देखकर उठना नहीं, क्योंकि बाबा कोई ऐसे रूप नहीं है जो कोई इन चरम चक्षुओं से उसे पहचान पाए। जब तक ज्ञान से दिव्य नेत्र की प्राप्ति नहीं हुई, दिव्य बुद्धि को प्राप्त नहीं किया, तब तक उस दाता को नहीं जान सकते। तो मैं यही बात कह रही थी कि बाबा हमेशा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे, और ब्राह्मणों में भी दो प्रकार के बच्चे। एक बार साकार बाबा जब थे तब बाबा ने सेवा केंद्रों पर लिखा कि बच्चे बाबा को कच्चे ब्राह्मण और पक्के ब्राह्मणों की लिस्ट लिखकर भेजो। अब आप सोचो किसी को बता तो नहीं सकते हैं कि कच्चे ब्राह्मण है या पक्के ब्राह्मण है, तो समझ सकते हैं कि कच्चा किसको कहेंगे, पक्का किसको कहेंगे। लेकिन बाबा ने विशेष पक्के ब्राह्मण की परिभाषा में पवित्रता ही है, मर्यादाएं तो है ही, लेकिन वो पढ़ता है और पढ़ाता है, वो शक्ति लेता है और शक्ति का सहयोग योगदान के रूप में अन्य आत्माओं को देता है। वो अपना जीवन पावन बनाता है और दूसरों के जीवन को पावन बनाने की सेवा करता है। वे पक्का ब्राह्मण। तो पक्के ब्राह्मण बाबा के जो बच्चे हैं, उन्हें मालूम है कि बाबा जो हमको कहते हैं वो केवल हमारे लिए नहीं, लेकिन सर्व आत्माओं को इन गुणों का इन शक्तियों का, इन अनुभवों का हमें योगदान भी देना है। तो ये बाबा की बात हम कभी विस्मृत ना हो जाए। ये भी एक बात मैं सोच रही थी कि आज के जगत में मनुष्य जो धनाढ्य हैं या बड़े घूमने के शौकीन हैं, तो वो देश विदेश घूम घूम के काफी थक गए हैं। बहुत देखा देशों को, बहुत गए विदेशों में, लेकिन अब उनकी इच्छाएं क्या है कि हम स्पेसशिप में जाएं। कितने करोड़ रुपया लगता है उनका वहां जाने में, और ऐसे कुछ स्पेसशिप में होकर भी आए, और स्पेसशिप में जाने से पूर्व उन्हें कितनी ट्रेनिंग दी जाती है। हमने देखा कि कैसे वो ट्रेनिंग लेते हैं, किस प्रकार वो रूम ऐसा है बड़ा सारा जिसमें जमीन से छत तक पानी ही पानी है और ट्रांसपेरेंट पानी है, कैसे उसमें चलना है, कैसे उसमें विचरण करना है, वो काफी अच्छी ट्रेनिंग पहले मिलती है फिर वहां जाते हैं। तो मैं उसका वर्णन नहीं करने जा रही, लेकिन मैं ये बात सुना रही जा रही हूं कि जब रॉकेट ऊपर उन्हें स्पेसशिप में ले जाता है तो रॉकेट को कितनी ज्यादा हीटिंग की, अग्नि की आवश्यकता होती है, और इतनी तेज आग होती है जो रॉकेट ऊपर जाता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बड़ा सुंदर स्पष्ट किया हुआ है कि बच्चे आत्मा स्वयं ही रॉकेट और तीक्ष्ण रॉकेट है। उस रॉकेट की गति से भी आत्मा की गति ज्यादा तेज है। अब बात यह है कि इस रॉकेट को ऊपर जाना है, स्पेसशिप तक नहीं, लेकिन इससे भी परे, सूक्ष्म वतन से भी पार, मूल वतन में जाना है। तो उसके लिए इसे किस चीज की आवश्यकता है? बाबा रोज रोज हमको स्पष्ट करते हैं कि बच्चे ये 84वां अंतिम जन्म है। अगर कुछ बच्चों ने शरीर छोड़ दूसरा जन्म लिया भी, तो वो उनकी केवल मात्र सेवा की ट्रांसफर हुई है। वो उनका ज्ञान का जन्म पूरा हो गया, ऐसा नहीं कि वो फिर ज्ञान ले रहे हैं, योग लगा रहे हैं, वो उनका अंतिम जन्म है। लेकिन सेवा की ट्रांसफर में, जिसको बाबा कहते हैं एडवांस में, कई आत्माओं को और कार्य अर्थ जाना है, वो आत्माएं गई। तो हम सबको मालूम है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, और अंतिम जन्म में हम सबको अपनी तैयारी क्या करनी, हमें मालूम है हम सबको जाना है। तो बाबा ने हम बच्चों को सुंदर स्पष्ट किया है कि आत्मा रॉकेट को जाने के लिए यहां से अपना किनारा छोड़ना होगा। अगर वो यहां से अपना किनारा छोड़ती है, और उस किनारे का मतलब ये दुनिया, ये संबंध, यहां तक की देह, इन सब से डिटैच स्टेज, न्यारी स्थिति जब आत्मा की आ जाती है, तब आत्मा इस साकार जगत में रह नहीं पाएगी। वो रॉकेट से भी तीक्ष्ण गति में अपने धाम वापस चली जाएगी। इसलिए बच्चों को चेक करना चाहिए कहीं कोई किनारा हमने पकड़ा हुआ तो नहीं है, चाहे संसार के आकर्षण का कहो, चाहे किन्हीं पदार्थों का कहो, चाहे किन्हीं संस्कारों का कहो, चाहे कुछ आदतों का कहो, चाहे कोई जीवन की चीजें जो आकर्षित करती हैं, उन चीजों का कहो, कहीं भी कोई भी किनारा कहीं भी अटका हुआ होगा तो आत्मा रॉकेट उड़ नहीं सकेगी। इसलिए बाबा कहते हैं उस रॉकेट को उड़ाने के लिए सजा की अग्नि से उसे क्रॉस करना पड़ेगा, और वो अग्नि उसे उड़ाने में सहयोग देगी। इसलिए बच्चे अंतिम समय के उस विनाश के समय की अग्नि से बचने से पूर्व स्वयं को स्वयं चेक करो कि कोई किनारा हमने पकड़ा तो नहीं है। और उसके लिए बाबा ने कितना सरल हमें कर दिया कि सदा याद रखो बाबा ही मेरा संसार है। संसार में क्या होता है, प्राणी होते हैं, पदार्थ होते हैं, घटनाएं होती, लेकिन बाबा ही जब मेरा संसार है तो संसार से मुझे कुछ प्राप्त होता है, तब मेरा आकर्षण जाता है। और जब बाबा को संसार समझकर हम एक बाबा से इतना नाता जोड़ लेंगे जो किसी प्रकार की प्राप्ति की अप्राप्ति नहीं रह सकेगी, कमी या कमजोरी नहीं रह सकेगी, तब हमारे सब तरह से बुद्धि का योग हटेगा और कमल सम जीवन जीते हुए हम आत्माएं अपने मुक्ति धाम में सहज जा सकेंगे।
ओम शांति।